ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप पिछले 38 वर्षों से बाबा के ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और पिछले 28 वर्षों से मधुबन में रहकर यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। आज ही के दिन 28 दिन पूरे हुए हैं, 28 साल। और बाकी तो विशेषता आप सभी को पता है कि आप कैड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसके द्वारा कई हार्ट पेशेंट्स को आपने ठीक किया है। दिल वाला ग्रुप के नाम से आप जाने जाते हैं। तो ऐसे दिल वाले ग्रुप वाले दिलाराम बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रैक्टिकल सरल रीति से कैसे उतारा है, आज उनके अनुभवों के आधार से हम सुनेंगे कि जो हमारा नष्टो मोहा बनने का लक्ष्य है। अर्जुन ने भी अंत में 18वें चैप्टर में क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तब जाकर गीता पूरी हुई। तो हमें भी वो स्थिति प्राप्त करनी है। तो कैसे वो स्थिति प्राप्त करें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ हैं, सुनते हैं भ्राता जी के अनुभव के आधार से। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। कहाँ से ग्रुप है ये? ग्रुप कहाँ का है? बोकारो से। चलिए हम इस देह और देह की दुनिया से, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लीजिए। अशरीरी बन जाइए। मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड। एक मिनट के लिए सभी चलते हैं ऊपर। ओम शांति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा या स्मृति स्वरूप, हम सभी का लक्ष्य क्या है? हमारा लास्ट का पेपर क्या है आप सभी जानते हैं। आपकी लास्ट क्लास भी है ना, ये आज लास्ट क्लास है ना? तो लास्ट का पेपर कौन सा है हमारा, बताइए। हमारा जो एग्जामिनर है वो इतना परफेक्ट है, पेपर भी बता देता है, क्वेश्चन भी बता देता है, कितना समय में पेपर पूरा करना है वो भी बता देता है, और उस पेपर को करने की विधि भी बता देता है ने? और प्रैक्टिस भी करा देता है। उसके बाद भी सिर्फ 8 ही पास होते हैं, पास विधान होते हैं, नहीं सर? 108 फर्स्ट डिवीजन में आते हैं ना? किंतु बाबा ने कहा था एक बार, आप पुरुषार्थ करो तो बाबा क्या करेगा, 108 की माला में बहुत सारी डड़ियां लगा देगा। तो अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम ऐसे बन सकते हैं ना। तो अब रिटर्न जर्नी में हमको नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है ना। हम जैसे अभी हमने कहा, अभी हमने प्रैक्टिस की ना, एक सेकंड में भी, इस सेकंड से भी कम समय में इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के मैं शरीरी आत्मा हूं, ये देह से बिल्कुल अलग हूं, देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। अशरीरी एकदम बनने का बार बार अभ्यास हो, एक सेकेंड में उड़ने का अभ्यास हो, यही तो स्मृति स्वरूप की निशानी है। अगर स्मृति सदा बनी रहे तो नष्ट मोहा हुए नहीं हुए? हुए, क्योंकि मैं आत्मा शरीर, आज की मुरली में भी था ना, मैं आत्मा शरीर आई थी और अब क्या करना है, वापस साथ में देह को लेके जाना, अशरीरी बन के ही जाना। अब अगर हम मुझे नष्टोमोह स्मृति लब्धा बनना है, तो पापा ने एक बात और कही हुई इसी कॉन्टेक्स्ट में, अचानक बनना है नष्टोमोह स्मृति स्वरूप या कुछ बता के होने वाला है, अचानक होना है? और फिर एवरेडी और बहुत काल, तो एवरेडी का क्या अर्थ है? एवरेडी मतलब संपन्न और संपूर्ण। कई किसी को भाई बहनों को कहते हैं ना कि एवरेडी हो जाने के लिए, कहता हाँ एवरेडी है। एवरेडी का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे आज की मूल्य में था तीसरे पेज के लास्ट में, ये शरीर बहुत वैल्यूबल है ना, कैसे चला जाए, हमें क्या करना है, अभ्यास ऐसा करना पावरफुल जो याद करते 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 आयु, याद से आयु बढ़ती जाएगी, और जब याद से आयु बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो, सत्युग में हमारी आयु कितनी हो जाएगी, 150 वर्ष। कैसे किस अभ्यास से होगी, इसी अभ्यास से होगी ना? तो हमको अचानक मतलब अचानक बहुत काल, एवरेडी का अर्थ क्या है, एवरेडी मतलब संपन्न और संपूर्ण। जब संपन्न और संपूर्ण रहने का बहुत काल का अभ्यास होगा तो अचानक के पेपर में पास होंगे, राइट। अगर अभ्यास नहीं होगा अचानक संपन्न और संपूर्ण बनने का, रहने का, बनने का नहीं रहने का, बहुत काल माना क्या होता है, एनीवन आप में से कोई बताए बहुत काल का अर्थ क्या है? जब से ज्ञान में आए तब से, मान लीजिए अभी तक मान लीजिए हमारा टेंशन नहीं था तो हमारा बहुत काल नहीं हो सकता, अभी से बहुत काल हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता, बहने बताए हो सकता है बहुत काल, नहीं हो सकता। अगर हम श्वासों श्वास निरंतर अभी से भी हम बाबा की याद में लग जाएं, अभी से भी लग जाएं, हर सेकंड हर संकल्प ना, हर धड़कन में बाबा समाया हो, अपना लक्ष्य समाया हो, तो क्या होगा, यही बहुत काल हो जाएगा। इसी घड़ी से अगर हम शुरू कर दें, पर प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है जो हमने 63 जन्म में पाप कर्म किए ना, हम जानते हैं हमें ज्ञान मिला है, आज की मुरली तो इतनी वंडरफुल थी, कितनी बार पढ़ी है आपने सुबह से, कितनी, आप तो भट्टी में है ना, कितनी बार पढ़ी है, कितने घंटे मनन चिंतन किया है बताओ, 6 बार तो मैं पढ़ चुका हूं ना, कितने कितने घंटे मनन चिंतन किया है इसका, सुबह से मनन चिंतन मंथन से मनन कितनी देर किया, आज की मुरली तो मैं समझता हूं ये मुझे याद आता है, ओम शांति भवन में दादी प्रकाशमणि ने मुरली सुनाई थी, और क्या लहरों में लहराया था, दादी मुरली सुना रही थी और हम सब लहरों में लहरा रहे थे, अपने को आत्मा समझ के, आत्मा देखो दूसरे को भी आत्मा देखो, तुम्हारा क्या जाता है दूसरा कुछ भी करे, मुख से कोई कुछ कहे तो मैं एक एक हाथ की ताली, तुम वो मुख से ताली बजाए तुम ताली नहीं बजाओ ना। और बाबा ने बताया ऊंची अवस्था कैसे बनानी, नष्टोमोह कैसे बनना है, आज की मुरली में था ना। तो नष्टोमोह बनने के लिए, अगर हम नष्टोमोह एवरेडी बनना है, नष्टोमोह स्मृति लब्धा बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, अगर हमको अचानक बहुत काल एवरेडी का जो बाबा ने कहा बार बार अपने पुरुषार्थ में लेकर के आओ वो बनना है, तो हमें ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, हर कर्म करते क्या क्या स्थिति का परिचय दिया, चाहे बाबा चाहे कुछ भी, अनाज साफ करवा रहे हैं, अनाज साफ कर रहे हैं, उपले बना रहे हैं, बाबा भोजन कर रहे हैं, हर समय बाबा का क्या क्या साक्षात्कार होता था, उस समय कोई आ जाए तो बाबा कैसे लगते थे, बाबा को कभी किसी ने साधारण रूप में देखा नहीं था। 1936 से जब से बाबा शिव बाबा की पधरामणि हुई, उनसे कुछ साधारण व्यक्ति का रूप किसी ने देखा नहीं, सबने उनको कर्म योगी के रूप में देखा, देखा नहीं देखा, मतलब जिसने देखा फरिश्ते के रूप में देखा, बाबा को फरिश्ते के रूप में ही देखा। कर्मयोगी माना फरिश्ता, कर्मयोगी फरिश्ता, कर्म और योग का बैलेंस। और बाबा ने लास्ट में अभ्यास करते करते, शरीर स्थिति का अभ्यास करते करते इतना अभ्यास किया, लोग यही कहते हैं ना बाबा यहां पे है ही नहीं, है ना, बाबा गुम हो जाते थे, है ना, और सामने वाले को बैशरी बना देते थे। बाबा के पास जो भी आता था, खुद तो बाबा शरीर रहते थे किंतु सामने वाला बैशरी वो भी भूल जाता था। तो बाबा ने ऐसा अभ्यास करते करते अंत में जब लास्ट दिन 18 जनवरी को क्या हुआ, बाबा अशरीरी बन के और दादियों को भी, जो दादी थी उसको भी अशरीरी बना के उड़ गए। पता लगा किसी को कि बाबा कहां गए, है ना, एकदम नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बन के उड़ गए। दादियां सामने खड़ी थी, भाई खड़े थे, कि तो किसी के प्रति भी जरा भी मोह आया बाबा को, आया, जरा भी मोह नहीं आया, बस ऐसे उड़ गए। ऐसा ही प्रैक्टिकल स्वरूप हमको ही बनना है, एकदम जैसे मक्खन में से बाल। डॉक्टर तो बहुत बाद में आया है ना, डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसी स्थिति हमारी कैसे बनेगी? अगर हमें ऐसी स्थिति बनानी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा है स्मृति स्वरूप, तो उसका मंत्र कौन सा है? मन मना भव है ना। यंत्र कौन सा है मन मना भाव बनने का? यंत्र कौन सा है बताओ? बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, दिव्य बुद्धि उसका यंत्र है। अगर दिव्य बुद्धि होती है तो ही हमारा मन मना भाव हो सकता है। बुद्धि की लाइन अगर क्लीन और क्लियर है तभी मन मना भाव हो सकते हैं। बुद्धि में कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ है तो नहीं हो सकते। और बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लियर रहे, या कहें कि बुद्धि हमारी दिव्य बन जाए, उसका मेन स्विच कौन सा है बताओ? मेन स्विच होता है ना, एक यंत्र का मेन स्विच होता है, नहीं होता? इसका भी स्विच है ना कोई? नहीं, इसका स्विच है आपके पास भैया, ऑफ करने का स्विच है ना? तो स्विच ऑफ कर दो तो ये कामगिरी करेगा ना? नहीं, ये यंत्र है। यंत्र है सच्ची दिल, सॉरी मेन स्विच है सच्ची दिल साफ। अगर दिल सच्ची दिल साफ दिल है तो ये यंत्र काम करता है। थोड़ा भी दिल में झूठ है ना, थोड़ा सा भी असत्य है, थोड़ा सा भी साफ दिल के बजाय मन श्रीमत के अलावा थोड़ा सा ही मनमत परमत है, तो ये यंत्र क्या करेगा? काम नहीं करेगा। और यंत्र काम नहीं करेगा तो क्या होगा? मन मना भव नहीं हो सकते। मंत्र काम नहीं करेगा, और मंत्र काम नहीं करेगा तो स्मृति स्वरूप नहीं हो सकते, और स्मृति स्वरूप नहीं हो सकते तो क्या होगा? नष्टो मोह नहीं हो सकते। नहीं, सिंपल है ना। चलिए चलते हैं, आप समझते हैं कि हमें बीच में हमारे क्या प्रॉब्लम है। बीच में जो 63 जन्म ने पाप कर्म किए ना, वो हमको नष्टो मोह नहीं होने देते, वो हमको स्मृति स्वरूप नहीं बनने देते। तो 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म कैसे करेंगे मन मना भाव होने से ना? अब हम चलते हैं यात्रा पर, समझते हैं कैसे हम अपने दिल को, पहले सबसे पहला जब मन मेन स्विच तो ऑन करें ना, अगर मेन स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? यंत्र मना मोटर चालू हो जाएगी ना, और मोटर चालू हो जाएगी तो क्या होगा? मंत्र चालू हो जाएगा, मंत्र चालू होगा तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो हम नष्ट हुआ स्मृति लब्धा बन जाएंगे। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, राइट? तो सच्ची दिल साफ दिल का मतलब क्या है? हमारे दिल में क्या होता है? दिल किसे कहते हैं पता है आपको? दिल किसे कहते हैं? बुद्धि पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं? अभी था ना कल की परसों की बुद्धि में प्रधान था ना, दिल बुद्धि मन और तन एक साथ होने चाहिए। तो बाबा ने अलग अलग क्यों कहा? दिल बुद्धि मन एक साथ, एक ही स्थिति में, एक एक लाइन में हो, तब हमारी ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत हो सकती है। दिल बुद्धि मन और तन चारों जब एक लाइन में स्थित होते हैं ना, तब हमारी ज्वाला ज्वाला स्वरूप योग अग्नि जागृत होती है। जिससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं, 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। आपने देखा है जो शूटिंग रेंज होती है ना, वहां पर एक शूटिंग बोर्ड होता है, देखा है आपने? किन्होंने देखा है ना, जो शूटिंग करते हैं ना पिस्टल से या तीर कमान से करते हैं ना, तो बीच में एक बिंदु होता है, उसके पास पहला सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। जो पहला सर्कल होता है ना, अगर उसमें आप हिट करो तो कितने नंबर मिलते हैं? 10/10 है ना, 10/10। सेकेंड सर्कल में हिट करो तो 9/10, थर्ड में करो तो 8/10 है ना। तो ये जो पहला सर्कल है दिल, ये दिल है, वो बिंदु आत्मा है, और वो जो पहला सर्कल है वो दिल है, चेतना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, हिंदी में कहते हैं चेतना, या दिल भी कहते हैं। मतलब ये जो आत्मा की सीट है ना, यहां से 2.5 अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जंक्शन है, जो आत्मा से साथ एनर्जी निकल रही है, उसको सेंस कर लेती है वो एनर्जी। अब माउंट आबू में भी जैसे देखें, जब बरसात का मौसम होता है, बहुत ऊपर से लगभग कई कई जगह तो झरने ऐसे गिरते हैं पानी के, जो 500-600 फुट ऊपर से गिरते हैं, पानी गिरता है। तो बिजली बनती है क्या यहां पर? बिजली बनती है? नहीं बनती, पानी गिर रहा है पर वहां बिजली नहीं बनती है। किंतु जो नर्मदा डैम है या भाखड़ा डैम है, वहां 390 फुट से पानी गिरता है। नीचे क्या होते हैं? टर्बाइंस होती हैं। टर्बाइंस के पानी गिरता है तो घूमती है टर्बाइंस, उससे बिजली बनती है, डायनेमोज में जाती है। और आपसे 20,000 वोल्ट की तारें चलती हैं, वहां से हाई टेंशन वायर्स पावर हाउस में आती हैं, और वहां से 10,000 वोल्ट की तारें चलती हैं आपके कहां पर आती हैं, 11,000 वोल्ट, 22,000 और 11,000 वोल्ट की तारें चलती हैं, तो आपके पावर हाउस में आती हैं, और वहां से फिर आपके आपके मोहल्ले में आते हैं, वहां ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको 5 और कम करते हैं तो क्या होता है, वो 1100 वोल्ट की तार होती है, फिर 1100 से 220 वोल्ट कम करते हैं ना, तो इस तरह से फिर आपके उस घर में आने के बाद कितना काम होता है उससे। सेम चीज ये आत्मा की सीट है, और मेरे दिल में मेरी जो चेतना है, मैं अपने को क्या समझता हूं, मोह कहां है हमारा? सबसे ज्यादा मोह बताओ किस चीज का होता है इंसान को? अपने देह का है ना, देह भान, कुछ भी थोड़ा शरीर पर जाए कितना मोह, कितना हम कितना टेंशन रखते हैं, सारे खुंसी भी हो जाए ना यहां पर तो क्या होता है, सारा ध्यान मन बुद्धि इसी पे लगा रहता है नहीं, चेहरे पे एक खुंसी हो जाए है ना, एक दाग पड़ जाए तो क्या होता है, इवन कपड़े पे भी दाग पड़ जाए तो क्या होता है, सफेद ड्रेस पे दाग पड़ जाए तो कैसे लगता है? तो मतलब हमें इस देह का सबसे बड़ा जो मोह किस चीज का है आत्मा को, देह का भान, देह भान का मोह है। फिर दूसरा मोह किस चीज का होता है, देहाभिमान है ना, देहाभिमान माने मैं स्त्री पुरुष का भान है ना, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, रोल कॉन्शियस, इंग्लिश में कहते हैं रोल कॉन्शियसनेस, देह भान को कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, देहाभिमान माने रोल कॉन्शियसनेस, मैं देह, मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, या मैं हाउसवाइफ हूं, व्हाटएवर, मां हूं, बाप हूं, पति हूं, पत्नी हूं, ये भी बहुत बड़ा मोह है। अपने रोल से बहुत अटैचमेंट होती है, होती ही नहीं होती, अटैचमेंट होती है, बहुत मोह होता है। तीसरा किस चीज से होता है, देह अभिमान के संबंध, संबंध किस चीज के होते हैं, देहभान के संबंध नहीं होते, किसके होते हैं, रोल कॉन्शियस बने ना, मैं बाप हूं तो मेरे बच्चे हैं है ना, मैं भाई, मैं कोई, मैं बच्चा हूं तो मेरे माता पिता हैं, है नहीं, तो ये भी कहां दिल में रहता है, देह अभिमान के संबंध संपर्क। फिर क्या रहता है, देह अभिमान के पदार्थ, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, मेरा मोबाइल। आपका मोबाइल खो जाए तो क्या होगा, हाँ, बट्टी क्या होगी, है नहीं, तो ये जो हमारा जो ना, ये इससे भी बहुत गहरा मोह होता है देव मन के प्रति। पदार्थों का जब हमारे अंदर, पदार्थों से अटैचमेंट को क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। और व्यक्तियों से अगर अटैचमेंट, इसको क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, राइट? है ना। तो ये जो है हमारा, ये हमारा चौथी बात हो गई, देह विमान के पदार्थ। और देह विमान के, फिर देह विमान से पैदा होने वाले पांच विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। और जब देव इन पांच विकारों से कि हम प्रैक्टिस करते हैं ना अपने जीवन में, इसके वश होकर हम कर्म करते हैं, तो उससे हमारे अंदर कुछ आदतें पैदा होती हैं। क्योंकि देह विमान, जैसे नॉर्मली क्या है, आत्मा एकदम क्या है, अलर्ट है आत्मा, 24 घंटे अलर्ट है। हम सो रहे हैं तो क्या होता है, क्या होता है? हार्ट हार्ट बंद कर देता काम करना, सांस आना बंद हो जाता है, पेट में खाना पचना बंद हो जाता है, किडनी खून काम करना बंद कर देती है, बकायदा काम। तो आत्मा अलर्ट है, 24 घंटे अलर्ट, आत्मा नहीं सोती है। काम करते बेसिक काम करना शुरू कर देती है, टू मच एक्टिविटी में नहीं आती। तो ये भी हमारे अंदर जो है आत्मा, जब ये हमारे, जब काम क्रोध लोभ मोह का आधा कलाप हमने क्या किया, तरह से जन्म इसके वशों के काम किया, विकारों के वशों के पाप कर्म किए, तो उस पाप कर्म के कारण आत्मा की एनर्जी जलती गई है। जो आत्मा अलर्ट थी ना, अभी क्या आ गया? आलस्य आ गया, यानी जल गई ना एनर्जी। कौन सी एनर्जी जली? आत्मा के पास कौन सी एनर्जी है? ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, एबीसीडी माना आत्मा, बाबा, कनेक्शन माना संबंध, डिफॉल्ट ड्रामा। ये हमारे अंदर ज्ञान, बाबा ने हमें सत्य की समझ दी है, किंतु हम थोड़ा भी क्रोध कर लेते हैं, थोड़ा भी किसके अटैचमेंट पे आ जाते हैं, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है, तो क्या होता है? विचार चलते हैं, इच्छाएं पैदा होती है, क्रोध आता है, कोई चीज को हम खरीद लें, ले लें, ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, इनके पास इतना अच्छा मोबाइल है, हमारे पास भी वाला मोबाइल होना चाहिए, नहीं? तो क्या होता है, इससे एनर्जी जलती है, आत्मा का ज्ञान जलता है, पवित्रता खत्म कम होती है, शांति माना हमारे विचार पास्ट के भविष्य के विचार चलने शुरू हो जाते हैं, वर्तमान में हम टिकना बंद कर देते हैं, प्यार खत्म हो जाता है, हमारा स्वार्थ का प्यार हो जाता है, कंडीशनल लव हो जाता है, हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। प्यार की डेफिनेशन क्या है बताइए? शांति की परिभाषा क्या है? शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, इसको शांति कहते हैं। और प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, सामने वाला व्यक्ति जैसा भी हो उसको वैसा स्वीकार करना प्यार है। खुशी क्या है? संतुष्टता, है ना। आनंद क्या है? आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, एकदम टोटल। आज का जो वरदान है, आज का वो था ना जो अव्यक्त इशारा था, एकदम फ्रीडम, बंधन मुक्त स्थिति, है ना, फरिश्ता, आनंद, लवली अवस्था, और फिर आठ शक्तियां। तो आत्मा के सातों एनर्जी जलती है, तो क्या होता है, आत्मा में हमको आलस्य आता है, जो ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन है, है ना, अलबेलापन। आत्मा एक्यूरेट है, हर चीज एक्यूरेट है, आपका हार्ट रेट बिल्कुल ठीक चलता है, देखो तो आप नॉर्मली उतना ही चलेगा, शुगर लेवल चेक रोज उतना ही निकलेगा, एक दो मिलीग्राम आगे पीछे हो सकता है, आपने आधी रोटी ज्यादा खाई होगी तो भी अगले दिन उतना ही शुगर आ जाती है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, है ना। ब्लड प्रेशर भी लगभग उतना ही आसपास आएगा, एक दो तीन फर्क होगा, हर चीज एक्यूरेट आत्मा कर रही है। उठने का टाइम भी आदत पड़ जाए, वही आदत आप उठ जाएंगे, बिना अलार्म के भी उठ जाएंगे, नहीं उठता होता, नहीं होता है, होता है, हर काम एक्यूरेट करती है, किंतु फिर अलबेलापन आ जाता है। दोष दर्शन, गुण दर्शन की आत्मा की आदत है, किंतु अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं अगर पांच विकार को वश कर देते। तो बेसिक जो हमारे दिल में जो क्या, कि दिल में क्या भरा हुआ है हमारे, आज मनुष्य के दिल में क्या भरा हुआ है? देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क का भान, सारे दिन उसके विचार चलते हैं, देहाभिमान के पदार्थों का भान, और देहाभिमान के पैसे पैदा से, देहमन से पैदा होने वाले पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके द्वारा जब इनको अभ्यास में लाते तो हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के दोष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, रहम दिल की बजाय बदलाने की भावना पैदा होती है, निश्चय विश्वास की बजाय चिंता और भय पैदा, निश्चय विश्वास की बजाय शक और अनुमान पैदा होता है, और बेफिक्र निश्चिंत स्थिति के बजाय निर्भयता के बजाय चिंता और भय पैदा होता है, और धैर्यता के बजाय जल्दीबाजी पैदा होती है, और विश्व कल्याणकारी की भावना के बजाय ईर्ष्या और द्वेष पैदा होती है। तो हमारे दिलों में यह भरा हुआ है, इन चीजों से हमारा मोह हो गया है। सारण देखो तो यही दिल में चलता है, चेतना में यही रहता भरा हुआ रहता है। सच्ची दिल किसे कहेंगे, जिस दिल में सत्य सत्य भरा हो। सत्य मान सच्ची दिल माना, जिस दिल सत्य कौन है, परम सत्य कौन है बताओ, परम सत्य कौन है, शिव बाबा, शिव बाबा परम सत्य है ना। परम सत्य क्यों है, वो सत्य की दो परिभाषा होती है, सत्य दो विशेषताएं, एक सत्य सदा होता है, एटर्नल होता है, इसका जन्म और मरण नहीं होता, ना जन्म होता है ना मरण होता है, तो सत्य सदा होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो परम सत्य शिव बाबा, शिव बाबा कैसा है, जन्म मरण से परे है, और दूसरा अपरिवर्तनशील है, उसकी एनर्जी कभी कम ज्यादा होती है क्या, सागर है, पावर हाउस है ना, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। तो परम सत्य बाबा, सच्ची दिल वो जिस दिल पे सिर्फ बाबा के अलावा कुछ और ना हो, राइट। जहां बाबा है ना वहां देवभान है, ना देहाभिमान है, है ना देहाभिमान के संबंध संपर्क है, ना देहाभिमान के पदार्थ है, ना देहाभिमान से पैदा होने वाले पांच विकार है, ना उनके बाल बच्चे हैं, संस्कार है। तो जिसकी दिल में बाबा, एक बाबा है ना, तो वो सच्ची दिल है, राइट। पर बाबा मेरे दिल में क्यों रहेगा, कौन रहता है हमारे दिल में बताओ, कौन रहता है हमारे दिल में, दिलों में कौन रहता है, नॉर्मली दिलों में कौन रहता है, जिससे हमारा स्नेह होता है, जिससे हमारा संबंध होता है, जिससे हमारी प्राप्ति होती है। तो हमें, हम ब्राह्मणों को क्या प्राप्ति हुई, हमको स्नेह किससे है हमारा, सबसे प्यारा कौन है हमें, श्री बाबा। प्रैक्टिकल अनुभव करके एक एक संबंध की, जिसने एक एक बाबा से एक एक संबंध की, संबंध को महसूस किया है और उसके अनुभव की अथॉरिटी बन गया है, वो उसके दिल में सदा बाबा रहता है। जिसने बाबा के साथ मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, खाली बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में मां से बाबा, शिव बाबा से शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाप के द्वारा कैसे हमको मां की पालना और प्यार देता है, बाप के रूप में शिव बाबा कैसे मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, वर्षा कैसे देता है, उसका प्रैक्टिकल लेके देखा हुआ है, यूज करके देखा है। मां के रूप में बाबा दो गिफ्ट देता है, कौन सी वाली, किसी को याद है, मुरली, पूरी मुरली चली हुई उसके ऊपर बताओ, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही दो गिफ्ट मिलती है हमको, कौन सी, जिसके पास दो दिव्य, जो जो दो ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है, जो इन दो गिफ्ट को यूज करता है, हमें अपने आप ही नष्ट हो स्मृति लब्धा बन जाता है, कौन सी गिफ्ट है बताओ, है जी, दिव्य दृष्टि, शिव दिव्य, जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, शिव बाबा ब्रह्मा मां के द्वारा हमको दिव्य दृष्टि का वरदान दे देता है। दिव्य दृष्टि का वरदान मिलते ही हम अपने को क्या देखने लगते हैं, जो आज की मुरली थी, क्या देखने लगते हैं, क्या महसूस करने लगते हैं, क्या रियलाइज करने लगते हैं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम चेत, परम सत्य, परम चैतन्य, परम पिता, परमात्मा, शिव बाबा के संतान हूं। ये दिव्य दृष्टि से महसूस होने लगता है, नहीं होने लगता होता है, और सामने वाला कैसा महसूस होने लगता है, इस आंख की बजाय इस आंख से दिखाई देने लगता है, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो उसकी संतान है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। तो जितना और उससे आगे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति करने लगते हैं, तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेज क्या दिव्य दृष्टि की होती है, नेक्स्ट स्टेज होती है हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे हम टीचर की पालना लेना शुरू करते हैं, बाप मां का, बाप का और टीचर का, बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, टीचर से हमारा क्या मिलता है, हमें त्रिकालदर्शी स्थिति मिलती है। तो परमधाम में हम कैसे थे और सत्युग में कैसे थे, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप बुद्धि में आने लगता है। तो अपना परम धाम में बाबा के साथ हमारा स्वरूप कैसा था? बाबा परम सत्य, परम पावन, परम शांत, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम। मैं कौन? मैं भी मास्टर। कौन? परम सत्य। मैं कौन? मास्टर परम पावन। हम ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा पावन कौन बन सकता है, जिसका मन भी पावन, तन भी पावन, है ना? नहीं, आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन। तो ऐसी स्थिति हमारी, हमें इमर्ज होने लगती है। बाबा के पास जब हमें परमधाम में, तो एकदम पावन है ना, समीप है ना बाबा के। तो इस तरह से जब अभ्यास करने लगते हैं ना परम पावन स्थिति का, तो बाबा के साथ बहुत ही इस स्मृति दिव्य बुद्धि की जो गिफ्ट, पहली पहली गिफ्ट मिली है, जितना इस दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करते जाते हैं उतना क्या होती जाती है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिवेट होती जाती है। राइट, ये मां का पहले 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 संबंध का वरदान। बिना दिव्य दृष्टि की गिफ्ट को यूज किए दिव्य बुद्धि एक्टिवेट नहीं होती है। दिव्य बुद्धि रॉकेट है, क्या करेगी एक सेकंड में, मुझे आत्मा को एक सेकंड में। सूक्ष्म शरीर कौन सा है हमारा बताओ, सूक्ष्म शरीर कौन सा है हमारा, बहने बताओ, टीचर बहने बताओ। सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, और बुद्धि, दिव्य बुद्धि उसकी क्या है, इंजन है। और फरिश्ते की ड्रेस कौन सी है, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस कौन सी होती है बताओ, हाँ जी, कौन सी, लाइट। संस्कार दिव्य बुद्धि सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। कैसे लाइट का शरीर कैसे बनता है, जितना हम मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, हमारे मन दिव्य बुद्धि से है ना, बाबा से, उसको जो एबीसीडी का, एबीसीडी ना आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, या मुरली आज की मुरली थी, उसको बार बार मनन करो, रिवाइज करो, मन ही मन में चिंतन करो, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन कैसे बनना है ना? और सिमरन जो मक्खन निकला उसको साथ में कार्य में लगाओ, कर्म योगी में कर्म कर्म। तो क्या होगा, मन में क्या आती गई, लाइट आती जा रही है। क्या आती जा रही है, मन में पहले निरा था, देह भान का, देह विमान का, देह विमान के संबंध संपर्क का, देह विमान के पदार्थों का। अभी क्या हुआ, दिल में बाबा आया तो मन में लाइट आनी शुरू हो गई। राइट, तो लाइट आनी शुरू हुई तो क्या हो गया, अब ये लाइट का शरीर बन रहा है। और फिर बाबा ने क्या, मां क्या करती है, मां बच्चे को क्या करती है, कुल की मर्यादा समझाती है। क्या समझाती है कि बेटा हमारे हमारे कुल की मर्यादा क्या है, हम ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है, पवित्रता। दूसरी मर्यादा क्या है, शुद्ध सात्विक भोजन। तीसरी मर्यादा कौन सा है, सत्संग, सत्य सत्य का संग, माना बाबा एक सत्य है और मुरली सत्य है, बाबा और मुरली का संग। चौथा क्या है, दैवी गुणों की धारणा, मतलब हमें किसी भी विकार को टच भी नहीं करना है, संकल्प से भी टच नहीं करना है। क्रोध करना तो अलग बात है, किसी की तरफ आकर्षित होना तो अलग बात है, संकल्प भी नहीं आना चाहिए किसी की तरफ जाने का। किसी की शक्ल और अकल को देख के आकर्षित होना नहीं, ये भी काम विकार है। क्रोध किसी बात को देख के हमें रोब भी ना आए किसी बात का, लोभ किसी बात की इच्छा भी पैदा ना हो कि भाई मैं ये खा लूं ये पी लूं, नहीं, मोह भी पैदा ना हो किसी भी देहधारी से, जरा भी अहंकार का अंश भी ना हो। सुना, तो ऐसी हमारी स्थिति है क्या, तो ये हमें इतना इतना गहराई से इसको समझना है ना। तो अब पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुण, किसी विकार का अंश ना हो और दैवी गुण को धारणा करते जाए, ये चार हमारे ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। और हमारा नियम कौन से है, ये मां समझाती है बच्चे को, कौन कौन सा, सच्चा ब्राह्मण कौन बोलो, जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, पावरफुल अमृत वेला हो, मुरली कभी मिस ना करे। मुझे याद है जब से मैं ज्ञान में आया 38 ईयर्स, ऐसे तो 68 में हमारे घर में गीता पाठशाला बनी थी, और बचपन से दादियों के पास गए, पालना ली, गुरुवार का भोग खाया, संध्या का भी भोग खाया, पर हम उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए, पढ़ने के लिए चले गए, टाइम नहीं मिला, हॉस्टल में रहे, किंतु जब होश आई बड़े हुए तो फिर ज्ञान में वापस रेगुलर बेस पे आए। 18 साल पेट में रहे बाबा के, है ना, और फिर उसके बाद जन्म हुआ, है ना, मुरली खाते, लोगों से मिलते, सब कुछ करते हम ऐसे रहे, तब समझ में आई कि बाबा रेगुलर। पर जिस दिन समझ आ गया ना कि ये बाबा है और ये ऐसा ही है, तब से मैंने मुरली मिस नहीं की, अमृत वेला मिस नहीं किया, कुछ भी हुआ चाहे, तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन बाद बाबा ने क्या कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा वो याद नहीं आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज का वरदान क्या है, आज का स्लोगन क्या है, आज का व्यक्ति इशारा क्या है, ये अंदर बजना चाहिए, सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन होना चाहिए, तब हम सच्चे ब्राह्मण हैं। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सोते समय वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में ना सच्चा सच्चा पोता मेल, सुबह से लेके बाबा का, बाबा ने एक लेटर ले मुझे सुबह दिया मुरली के रूप में, सोते समय बाबा को मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा, बाबा आपने कहा था मैंने इतना परसेंट इसको किया, बाबा इतना नहीं, ये नहीं कर पाया, बाबा आपने कहा था ऐसे करना, मैं इतना परसेंट किया, इतना परसेंट नहीं किया, एक लेटर, लव लेटर बाबा का सुबह मिला, रात को हम एक लव लेटर लिखते, ठीक है, जैसे बाबा क्या कहते, पोता मेल, मैं उसको लव लेटर कहता हूं, ठीक है, तो हमारा भी ऐसे कैसे ऐसा लव लेटर होना चाहिए जो बाबा को हम रोज बताएं। आप लिखते हैं सभी लेटर? मैं तो रोज लिखता हूं लेटर, जब से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ 25 साल पूरे हुए भी ना, तब से बाबा ने बताया था ये बातें बहुत गहराई से बताई, तो तब से मैंने शुरू किया। तो मुरली, अटेंशन, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। तो ये माया, जब बाप ये दे देता है, ये चारों बातें करने वाला, चार मर्यादा, चार नियम पक्के करने वाला और दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि को यूज करने वाला, एक सेकंड में बाप सूक्ष्म वतन में इस सूक्ष्म शरीर के साथ बुद्धि में क्या ये चल रहा है, मन शुद्ध होता जा रहा है, लाइट बढ़ती जा रही है, संस्कार, ये चार ड्रेस, चार नियम, चार मर्यादा हमारी आदत बन जाती है, ये हमारी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है। ब्रह्मा बाबा की ड्रेस कैसी है, बहुत चमकीली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा उसका एम्बॉडीमेंट बन गया, स्वरूप बन गया। हमारी जितनी हम ये प्रैक्टिस करते जाए तो हमारी ड्रेस कैसी बनती जाएगी, चमकीली होती जाएगी। तो ये ड्रेस, इस आदत के साथ ही आप सूक्ष्म वतन में जा सकते हो बाप दादा की गोद में, अगर ये आदत नहीं है तो जा सकते हैं। यही बाबा ने कहा, बच्चे अमृत वेला तो बहुत अच्छा करते हैं, शक्तिशाली होकर बैठते हैं, किंतु जब कर्म में आते हैं तो क्या होता है, कर्म और योग अलग अलग हो जाता है। क्या होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया, कर्म और योग हमेशा इकट्ठा रख के दिखाया, नहीं दिखाया, तो हम अलग हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा समान अगर नष्ट हुआ स्मृति लब्धा बनना है तो कैसे बनेंगे, हर समय चलते फिरते उठते बैठते क्या करना पड़ेगा, दिव्य दृष्टि को यूज करना सीखो। आज जो बाबा की सेकंड पेज पे मुरली इसी बात पे थी, दिव्य दृष्टि पे, अपने को आत्मा देखो, दूसरे को आत्मा देखो, अपना अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप देखो, अपना आदि देवी देवता स्वरूप देखो, सामने वाला का भी अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करो, यही तो पवित्रता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, दिव्य बुद्धि, इसी बुद्धि हमारी इसी दुनिया में फंसी रहती है, बुद्धि जैसे जैसे हम ये करते हैं दिव्य बुद्धि हमारी क्या होती जा रही है, डिटैच होती जा रही है, किससे, इस देह और देह की दुनिया से। तो जितना अधिक हम ये करेंगे, जितना अधिक हम ये पुरुषार्थ करते हैं दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि को, तो हमारी दिल सच्ची साफ होती जाती है, सच्ची होती जाती, साफ माना जिस दिल में एक बाबा के अलावा दूसरा कुछ ना हो, बाबा की मुरली के अलावा दूसरा कुछ ना हो। हम क्या करते हैं, हम कभी कुछ सुनते हैं, कभी किसी के कुछ सुनते हैं, कभी आज मुरली बाबा ने क्या कहा, सिर्फ एक मेरे से ही सुनो, आज की मुरली में था, कल की मुरली में था, आज ही की मैं तीसरे पेज में था ना, तो एक मेरे से ही सुनो, क्यों दूसरे से नहीं सुनो, एक बाबा के अलावा दूसरा सुनते तो क्या होता है, कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी हो जाती है। तो बाबा की मुरली का एक 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 आप पढ़ते हो, ऐसे ध्यान से पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, देखो मैं मुरली कैसे पढ़ता हूं, देखो ये देखो, देखिए अपने, आप ऐसे पढ़ते हो, आप ऐसे पढ़ते हो? ये मूल्य का एक महावाक्य कैसा है? यही मुझको फरिश्ता बनाने वाला, यही मुझको नष्टोमा स्मृति लब्धा बनाने वाला, यही बाबा की डायरेक्शन है, यही बाबा की श्रीमत है। तो जितना हम इसका दिल हमारी सच्ची साफ इससे होती है, यही साबुन है। अगर मेरी दिल सच्ची साफ हो गई, मेरे दिल में बाबा आ गया और मुरली आ गई, मुरलीधर और मुरली आ गया, तो क्या हो गया? दिल सच्ची और साफ हो गई। अब ऐसी आत्मा की तीसरी आंख खुल जाएगी, आस्था तीसरा नेत्र। अगर मेरे अंदर जरा भी देवान देवीमान है, देवीमान के संबंध संपर्क का भान है, तो मेरी दिल सच्ची साफ नहीं है। दिल में देवमान है कुछ, है ना, कोई और है, देदारी है, तो मेरी तीसरी आंख बंद हो जाती है, तीसरा नेत्र बंद। ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसे कहते हैं? पहली शक्ति आत्मा की जो आठ शक्ति है ना, सत्य को परखने की शक्ति, सत्य और सत्य को परखने की शक्ति। अगर बाबा दिल में सर्व संबंधों से साथ है, तब मेरी तीसरी आंख खुलती है, माना सत्य को परखने की शक्ति, सत्य और असत्य को परखने की शक्ति। सारा दिन जब कार्य करते हैं हम, चाहे मैं ऑफिस में करें, घर में करें, क्या 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 करना पड़ता है आपको? सत्य और असत्य को परखना पड़ता है, नहीं परखना पड़ता है? परखना पड़ता है, नहीं परखना पड़ता है? सत्य और असत्य को परखना पड़ता है, और जो सत्य और सत्य को परखना पड़ता है, तो इसे ही तीसरी आंख कहते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम, इसी को विवेक कहते हैं। जब तीसरी आंख, जब सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, तो निर्णय शक्ति दिव्य होती है। मतलब दिव्य बुद्धि, हमारी बुद्धि क्या बनती है? निर्णय शक्ति दिव्य बन जाती है। और जब निर्णय शक्ति दिव्य बनती है, तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति इमर्ज होती है। यह मैं बता रहा हूं, दिल सच्ची साफ, हमने मेन स्विच ऑन कर दिया ना, तो क्या हुआ? बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी शुरू हो गई, सत्य को प्रण शक्ति जागृत हुई, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो गई, और क्या हुआ? विस्तार को सार में लाने की शक्ति। जो देह और देखी मन बुद्धि कहां फैला हुआ? देह और देखी दुनिया में फैला हुआ था। देह और देखी दुनिया से मन बुद्धि को समेट, बिंदी आत्मा बन, और लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ, लाइट का सूक्ष्म शरीर किसने बनाया? हमने खुद ने बनाया। लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में यह विस्तार है, बाप दादा की सारूपी गोद में आत्मा पहुंच जाती है, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद में पहुंच गई, और वहां जाके हम बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति, माँ का संबंध, बाप का संबंध, सभी नहीं है, टीचर का संबंध, माँ बाप के रूप में वर्षा, किंतु वर्षा किसको मिलता है? किसको मिलता है? कौन से वाले बच्चे को? सच्चे दिल साफ दिल वाले बच्चे को, जिसने मां के द्वारा जो नियम और मर्यादाएं समझी हैं, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि को यूज किया है। वर्षा कौन सा है बताओ? हमारा वर्षा, अभी का वर्षा कौन है? सर्वत्र भविष्य का वर्षा है। कौन सा वर्षा? ये सात एनर्जी का वर्षा। वो बाप दादा के साथ शिव बाबा, बाप के रूप में शिव बाबा क्या करता है? ज्ञान सागर में बैठने का अनुभव कराता है। बाप दादा की गोद में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कंबाइन, उनकी गोद में वो कौन है? ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर के अंदर चले जाने की, ज्ञान का सागर जाने का मतलब को पानी का सागर नहीं है, उस ज्ञान के सागर मतलब उसमें समाने की अनुभूति होती है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, एक एक संबंध की अनुभूति होती है बाबा की गोद में, है ना। और ड्रामा से जो भी कुछ हो रहा है, मेरे को शरीर में कर्म भोग है, कुछ भी साक्षी दृष्टा का फील आता है। प्रैक्टिकल में बाबा की गोद में बैठ के अनुभूति आती है, क्योंकि हमारा तो 25 साल हो गए दिल वालों के साथ, 10,000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट ठीक कैसे हुए, उनके ब्लॉकेज कैसे खुलते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कैसे ठीक होती है, मोटापा कैसे ठीक होता है, एसिडिटी कैसे, दमा कैसे ठीक होता है, जब सही विधि से योग करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हमारी विधि एक्यूरेट नहीं, इसलिए हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होते। तो ज्ञान सागर, जब बाप का वर्षा क्या है, इस समय ज्ञान का सागर, प्रैक्टिकल उसको महसूस करना, पवित्रता का सागर। ज्ञान सागर को पहले गहराई से महसूस करो, पवित्रता के सागर में समा जाओ। पवित्रता क्या है, उस गहराई में जाओ। शांति के सागर की गहराई में चले जाओ। प्रैक्टिकल में वहां महसूस होता है, रियलाइज होता है, सत्य प्रेम का सागर। क्या होता है प्रेम? अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने। शिव बाबा कौन है? यथार्थ शिव बाबा का कोई निर्णय गलत होता है क्या? यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर वो है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर है शिव बाबा। सारी दुनिया के विस्तार से अपने आप को सार में ला करके ऊपर बैठा है आराम से। दुनिया में इतनी लड़ाई चल रही है, इतना विनाश हो रहा है, वो क्या उसको प्रॉब्लम है? उसको अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वैसा फल पा रहा है। बाबा अपने बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, बाबा के डिस्टर्ब होता है क्या? शिव बाबा डिस्टर्ब होता है? क्यों नहीं होता है? अपने कर्मों का फल है। साक्षी दृष्टा शिव बाबा कौन है? परम साक्षी दृष्टा। हम कौन है? हम उसके बच्चे, बाप समान। तो हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा कुछ हुआ मेरे को, हो गया डिस्टर्ब, हो गए उसको, हुआ डिस्टर्ब, हो गए मेरे बेटे को, हुआ डिस्टर्ब, हो गए मेरी युगल को, हुआ डिस्टर्ब, हो गए ऐसे। तो हम बने साक्षी दृष्टा, बने प्रैक्टिकल में बने। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, है ना? मेरे को छाती में दर्द शुरू हो गया अभी अचानक, हार्ट पेशेंट है, तो क्या करें? रोना शुरू कर दें? नहीं, साक्षी दृष्टा बन के मैं आत्मा हीलर हूं, अपने को खुद बाबा के साथ मिलकर परम सुप्रीम सा जन है ना, उसको अपने आप को हील कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है क्या करें? अमृत वेला तो पावरफुल होता ही ना, वो तो बीज रूप स्थिति में जाना ही होता है, पर मेन बात है कर्मयोगी स्थिति, सारा दिन कर्मयोगी स्थिति है ना। तो हमें इस तरह से बाबा के साथ बाप का अनुभव, टीचर के रूप में त्रिकालदशी, बाबा की गोद में बैठ के सदर्शन कर घुमाना, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप मध्य पूज्य स्वरूप संगम ब्राह्मण स्वरूप न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। फिर सतगुरु के रूप में साकारी आकारी की निर्दिल करो, साकारी आकारी निराकार की निर्दिल करो। बंधु के रूप में सारा बोझ बाबा को दे दिया, बड़ा भाई है ना। सखा के रूप में हमने मन की जो टेंशन बाबा को बता दी, बाबा बाबा की गोद में बैठे हैं सारी बात बताई। साजन के रूप में बाबा 36 दैवी गुणों से जा देता है, सज्जन के रूप में जो जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना निकालता रहता है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तन मन धन और सम्मन बाबा को समर्पण कर सकते हैं। बाबा ऐसे लेता नहीं है किसी का, बाबा की गोद में जब बाबा को बाबा ऐसा महसूस करते ना, बाबा ये आपका, तब बाबा के हम बच्चे बनते हैं, बाबा को तब हम अपना बच्चा बना सकते हैं। बलिहार जाना होता है ना, जब 8 संबंध की अनुभूति करोगे ना बाबा के साथ, तब बाबा क्या बनता है? हमारा बच्चा बनता है। 9 संबंध मुख्य ना, कौन कौन से? माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और 9वां बच्चा। बच्चा कब बनेगा? जब तक आपने 8 संबंध की अनुभूति नहीं की है, मां के संबंध को जिया नहीं लाइफ में, बाप के संबंध को जिया नहीं है। जब मां बाप के संबंध को जी लिया तब टीचर के पास जाते हैं, तब त्रिकालदर्शी बनाता है वो। फिर क्या होता है? जब माँ बाप और टीचर से पढ़ लेते फिर क्या बनता है? फिर सतगुरु मिलता है ना। फिर सतगुरु मिलने के बाद क्या होता है? फिर बंधु का पार्ट शिव बाबा हमारे साथ निभाता, सारा बोझ बच्चा मुझे दे दो, लौकिक अलौकिक की जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं तुम्हें टाइम पर हर चीज एक्यूरेट टच करूंगा, ये कर लो, एक एक काम बताऊंगा, ये कर लो। फिर सखा के रूप में जो तुमसे गलतियां होंगी जाने अनजाने मुझे बता दो, हल्के हो जाओ। फिर साजन के रूप में 6 संबंध निभाने के बाद साजन बनता है वो हमारा, तब सजाता है दैवी गुणों से, हल्का होने के बाद सब गंदगी बाहर निकालने के बाद, है ना? ऐसा सजाएगा कोई? आप कैसे गहने माताएं कब पहनती हैं? नहाने धोने के बाद ना, कैसी पहन लेती हो? हल्के होने के बाद कहते हैं ना, सेम वे बाबा भी ऐसे ही करता है सर्जन। फिर बाबा उसके बाद सर्जरी करता है, जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, फिर लास्ट में क्या होता है छोटी मोटी कटिंग होती है ना, छोटी मोटी कहीं रह जाता है ना, ठीक कर देता है ना। फिर उसके बाद बच्चा, फिर बाबा आपको अपना बच्चा बना सकते हैं। जहां जीत वहां जन्म। और जब बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब तुम मुझे अपना बच्चा बनाते हो ना, तब मैं तुमको अपना बच्चा बनाता हूं। अगर तुम हम मुझे अपना बच्चा नहीं बनाते तो मैं तुमको भी अपना बच्चा नहीं बनाता। सपूत बच्चा किसे कहते हैं, समझ में आ रही है बात? तो ये है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। जब बाबा के पास ऐसे विस्तार में सार में लाते हैं, वहां एक बात बाबा से करते हैं, संबंधों की अनुभूति करते हैं और बाबा से रूढ़िहान करते हैं। बाबा आज मुरली में आपने कहा ना, ये मेरे को समझ नहीं आया, मैं कैसे इसको लाइफ में लाऊं, मेरे सामने तो ये समस्या होती है। तो बाबा कहे भाई ऐसे करो बच्चे, राइट। तो जब वहां से संपन्न हो जाए ना, फुल हो जाओ, तो फिर बाबा क्या करता है आगे, फिर क्या करेगा बाबा, फिर वहां से बाबा, फिर वहां से जब हो जाओ तो फिर वहां से मन बुद्धि को वहां से भी समेट लो, सूक्ष्म शरीर को समेट लो, वहां से अश्री बन के अश्री बाप से कंबाइंड हो जाओ परमधाम घर में। अश्री बाप से कंबाइंड हो गए तो क्या होगा, करंट आनी शुरू हो गई, बैटरी चार्ज होनी शुरू होती है, आत्मारूपी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। जैसे मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया ना, तो क्या हुआ, अभी ईमेल वो नहीं चल रहा था आपका, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, यूट्यूब नहीं चल रहा था, अभी चार्ज होने शुरू हो गए तो क्या हो गया, अब शुरू हो जाता है, लाइट आनी शुरू हो जाती है ना, नहीं तो चार्ज होने शुरू हो गए। और उससे ऐसा परिवर्तन होता है आपके शरीर में, आपके शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, एंडोर्फिन निकलने शुरू हो जाते हैं। एंडोर्फिन होते हैं नेचुरल मॉर्फिन, अंदर मॉर्फिन निकलने, अंदर की मॉर्फिन निकलने शुरू, मॉर्फिन निकलने शुरू हो गई, अंदर के एनकेफेलिन निकलने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे रिलैक्सेशन सिस्टम चालू हो जाता है कि आपको जो तकलीफ हो रही है ना, दर्द हो रहा है शरीर में, हार्ट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, खत्म, फील ही नहीं होता है। अफीम खाने वाले को कुछ होता है क्या, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाओ, दर्द खत्म हो जाए, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं और बहुत हल्कापन फील होता है, बहुत हल्कापन, सूली कांटा हो जाती है, चाहे कैंसर भी हो रखा हो। मम्मा को याद है, मम्मा ने जब आखिरी दिन, मम्मा को इतना दर्द था, बाबा ने कहा बच्ची, मम्मा को बोला मम्मा आप अंगूर तैयार हो गए हैं, बच्चों को अंगूर बांट दो, और मम्मा ने 2 घंटा अंगूर बांटे और उसके थोड़ी देर बाद शरीर छोड़ दिया और बड़ी मुस्कुराते हुए बांटे सबको, बहुत ऐसे नहीं कोई दर्द हो रहा है तो दर्द की फील नहीं, एकदम ऐसे किया। तो दादी, मैंने बड़ी दादी को देखा, बड़ी दादी से बहुत लंबा समय रहा, दादी प्रकाशमणि, गले में ट्यूब पड़ी हुई है, दादी बोल नहीं सकती है, यहां पर ट्यूब पड़ी, यहां पर ट्यूब, यहां से ब्लड चढ़ खून की नाली में ट्यूब डाली हुई है, हाथ पैर भी सूजे हुए हैं, पर दादी अतीन्द्रिय सुख में खोई हुई है। तो ये इसे कहते हैं अशरीर देह अभिमान से अलग। आज इसके पास जाओ, रतम दादी के पास जाओ, निमोनिया हो गया दादी को, इन्फेक्शन हो गया, करम्भोग आते हैं, तकलीफ आती है, बुखार होता है, 102 बुखार है, पर दादी मुस्कुरा रही है। दादी को, दादी क्या हुआ, डॉक्टर हम डॉक्टर, दादी तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल टोटल ठीक है, उसको बुखार की अनुभूति नहीं है, उसको निमोनिया, सांस नहीं आ रहा है, सांस में सांस तेजी से चल रहा है पर उसको फीलिंग नहीं है, क्यों, ये पुरुषार्थ किया हुआ है, बाबा के साथ सर्व संबंधों से जीने का अभ्यास किया हुआ है, प्रैक्टिकल में अभ्यास किया है, कभी अमृत वेला मिस नहीं किया है, कभी मुरली मिस नहीं की है, सारा दिन अटेंशन बस बाप, दादी की डायरी देखो ना, दादी आत्मनिंदा की डायरी, डायरी में एक एक पॉइंट लिखती थी, एक एक पॉइंट लिखती थी, एक एक पॉइंट है ना, और सोने के पहले लेटर लिखना बाबा को, लेटर मतलब अभी तो खैर जब हम पवित्र बन जाते हैं तो बाबा से ऐसे भी कह सकते हैं, शुरू शुरू में जब आप बच्चे, हम बच्चे थे, लिखते हैं लेटर, पहले मेरे को लेटर लिखने में आधा घंटा लगता था रोज रात को, अभी 5 मिनट में हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पापक्रम नहीं रहे, कम होते जा रहे हैं, कुछ गलतियां कम होती हैं, पहले गलतियां बहुत होती थी, अब गलतियां कम होती हैं, राइट। तो ये अभ्यास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, करते हो नहीं करते, क्या सीख के जा रहे हो भट्टियों से? तो फिर क्या हुआ, अब सहन करने की शक्ति आ गई, पहले सहन नहीं होता था, अब सहन करने की शक्ति आ गई, अब मेरे को तकलीफ नहीं होती है, वो सहन करके भी समाने की शक्ति भी आ गई, पहले इतना सा सहन करते थे, इतना दर्द होता था, 10 लोगों को बताते थे, अरे पता है मेरे को ऐसे, कितना मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसको दिखाया, उसको दिखाया, उसने दवाई, वो उस दवाई ठीक नहीं हुआ, अभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक ही हो गया, क्या दिखाऊं, क्या बोलूं आपको, समाने की शक्ति आ गई, और समाना भी समा लिया और सामना और भी प्रॉब्लम आ रही है, और भी प्रॉब्लम तो एक के बाद एक आएंगी, पाप तो बहुत किए हुए हैं, सामना करने की शक्ति आ गई। और जो तंग कर रहे हैं उनको सहयोग, उनकी मदद भी करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। ये चार शक्तियों को कहते हैं, मिलाकर कहते हैं सहनशीलता। क्या बोलते हैं? सहनशीलता। अब पिछली जो पहली दो शक्ति ना, सत्य को प्रकट शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, ये दो वो पहली विवेक हो गई, ये निर्णय शक्ति दिव्य हो गई। अब छह शक्ति से मिलकर बनता है चित्त। चित्त समझे, सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो आप समझ में आएगी आपको, मैं क्योंकि मैं लेट भी आया थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैं समझता हूँ थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी तो आप बहुत अच्छा योग कर पाएंगे। इस भट्टी का सही मतलब बोकारो स्टील प्लांट वहां जाने के बाद आपको सुख मिलेगा, है ना। दिल सच्ची साफ है तो विवेक जागृत है, तीसरी आंख खुली हुई है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। इसकी बजाय उल्टा हो जाए तो क्या होगा? अगर दिल सच्ची नहीं है, दिल में कोई देहधारी बैठा हुआ है, राइट, कोई देह की चीज मेरे को ये चाहिए, क्या होगा? मुरली के अलावा मनमत परमत बैठी हुई है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो स्वामी जी ये बोलता है, ये स्वामी जी ये बोलता है ना, वो डॉक्टर ये बोलता है, वो डॉक्टर ये बोलता है, मनमत परमत है ना ये, तो है ना। तो ये अगर है तो क्या होगा? विवेक क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा, तीसरी आंख बंद हो जाएगी, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी, राइट। और क्या होगा? चित्त क्या होगा? सार विस्तार में चला जाएगा, राई का पहाड़। अभी तो हम क्या विस्तार, पहाड़ का राई बना रहे हैं, और क्या हो जाएगा? राई का पहाड़ बन जाएगा। हम विस्तार से सार में नहीं जाएंगे, सूक्ष्मतन बाप दादा की गोद में नहीं जा पाएंगे, फिर वहां से समेट, वहां बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति करके वहां से हम समेटने की शक्ति धारण करके परम धाम में नहीं जा पाएंगे, फिर क्या होगा? सहन होगा नहीं, समाना होगा नहीं, सामना होगा नहीं, और सहयोग होगा नहीं। तो क्या हो गया? चित्त कैसा हो गया? अशांत, चंचल और बेचैन हो गया। अब मनमना भाव कैसे होंगे? ये मैंने बताया यंत्र है। अब मनमना भाव, जैसा चित्त वैसा चिंतन। अब चित्त अशांत है, चंचल, बेचैन, तो क्या होगा मन में? चेतन मन में क्या चलेगा? क्या चलेगा बताओ? चेतन मन में कौन सी फाइल खुलेंगी? उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था, पुरानी पुरानी फाइलें। वो भी तंग करता है मेरे को, वो भी तंग करती है, वो उसने भी तंग कर दिया, उसने मेरे को ये सब बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, यही बातें चलेंगी ना, नहीं? यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है ना, नहीं ऐसे यही चलेगा ना, ये चिंतन चलता है। मुरली नहीं चलती है, मुरली पड़ी ना, मुरली की लाइन याद है आपको? याद है आज का वरदान? याद है स्लोगन? याद है आज का अव्यक्त इशारा? याद है? क्यों नहीं मुरली में बज रहा वो बाबा की मुरली? क्यों नहीं बज रही अंदर मन में मुरली? मन मना क्या मन में मुरली बजे, उसे कहते हैं मनमना भव। बाबा ने क्या कहा वो बजता रहे, उसे कहते हैं मनमना भव। राइट। तो हमें ऐसी स्थिति बनानी, बनी क्या हमारी स्थिति? तो वो चिंतन उसका चलता है जिसका दिल सच्ची साफ होती है, विवेक उसका विवेक जागृत होता है, निर्णय शक्ति दिव्य होती है, चित्त शांति का मन में होता है। तो कौन सी फाइलें खुलती हैं? पिछले कल्प के संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें, फरिश्ता स्वरूप की फाइलें, देवता स्वरूप की फाइलें। अब ये जब बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली छपती जाती है अंदर। आज बाबा ने कहा, आज का वरदान, आज का स्लोगन, आज बाबा ने कहा था, इससे मुझे ऐसे करना है, मुझे बाबा ने कहा ना ऐसा बनना है, मुझे सबको आत्मा देखना है, मुझे सबको ऐसे करना है, मुझे कोई कुछ भी करे मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, मुझे इस तरह से करना है ना। सारा दिन मुरली वही कर्म योगी स्थिति, तब सारा दिन कर्म योगी स्थिति बने तो चिंतन चलेगा, वो वाला बाबा की मुरली का चिंतन चलेगा सारा दिन मुरली। इसलिए मैं मुरली जेब में रहती ना मेरे, या तो बुद्धि में बजती रहेगी, नहीं बजेगी तो मैं खुद बजा लेता हूं, जैसे ही मौका मिलता है कार में बैठा मुरली निकाली, एक पॉइंट, सात पॉइंट है ना आज प्रश्न उत्तर में ऊंची अवस्था बनाने का, वो देखा मैंने किया आज सात दिन से, किया नहीं किया, सात पॉइंट से कितने पॉइंट किए, प्रैक्टिकल में बना कि नहीं बना, चेक किया है ना। आज बाबा ने इसमें क्या कहा था, इसमें यह क्या पॉइंट था, आज का वरदान क्या था, है ना? तो मैंने विल पावर द्वारा अपने एक को, हर एक को विल करने की विल की, मैंने पावर विल की, चेक किया, एकता और एकाग्रता की शक्ति यूज की, चेक करते हैं बार बार, है ना, राइट, चेक और चेंज करते हैं, तो सारे दिन लगन लगी रहती है, बाकी काम तो ऑटोमेटिक होते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि में कुछ गलत आता नहीं, तो हर चीज, डॉक्टरी भी अच्छी होती रहती है, पेशेंट भी आराम से ठीक होते रहते हैं, पेशेंट के आईसीयू में जाओ, पेशेंट को हाथ लगाओ, पेशेंट को अच्छा लगता है, राइट, समझ रहे हैं? आपको भी हर घर में, अपने घर में ऐसे ही लगेगा। तो ये है चिंतन, चला चिंतन माना मेरे को विचार, मन में चार बात टीम होती, टीम टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति। जब विचार को हम गहराई से, संबंध से, मेरे बाबा ने मेरे को आज ये कहा, मेरे बाप ने मेरे को ये कहा, मेरी मां ने मेरे को ये कहा, जो संबंध से बाबा को याद करते, तो हमारा विचार बार बार चलता है, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब बात, तो मेरे अंदर भावना पैदा होती है बाबा के लिए, बाबा देखो मेरे को क्या बना रहा है, मुझे नजर आता है मैं देवता बनने वाला हूं, फरिश्ता सो देवता बनने वाला, तो मेरा भावना के वाइब्रेशन बाबा को सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं, बाप दादा तक। और बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तो वो हजार गुना याद करता हूं, तो बाबा हजार गुना मेरे को याद करता, उसके बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच करते हैं, तो क्या हुआ, टेलीपैथी हो गई नहीं हो गई, कैचिंग पावर टचिंग पावर हो गई नहीं हो गई, तो कैचिंग पावर टचिंग पावर शुरू हो जाती है, तो ये शुरू हो जाती है। उससे क्या होता, फिर मैं इसी भावनाओं में रहता हूं, तो मेरे अंदर रूहानी वृत्ति बन गई, वृत्ति माने सर्कल, वही विचार साधने घूमते रहते हैं अंदर, तो क्या बन गया, रूहानी वृत्ति, फिर रूहानी दृष्टि, फिर हर एक में मुझे कोई दिखाई देता है, मैं ये हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, मैं भी लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं, ये भी लक्ष्मी नारायण, मैं देवता बनने वाला हूं, ये भी देवता बनने वाला है, राइट। तो दृष्टि बदल गई, वायुमंडल बदल गया। अब ये वायुमंडल क्या होगा, अंदर रिकॉर्ड होता है, अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे आपको ठंडी लगे तो ठंडी अंदर रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी, गर्मी होगी तो गर्मी रिकॉर्ड होगी, तो मेरे अंदर जो ज्ञान चला ना, वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, पवित्रता जो अंदर से आ रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, शांति आ रही है महसूस हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, सच्चा प्रेम मुझे महसूस हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, अतिंद्र सुख अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, आनंद रिकॉर्ड हो रहा है, जो महसूस कर रहा हूं वही रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा, जो वायुमंडल में बनेगा वही तो रिकॉर्ड होगा, नहीं नहीं होगा, बताइए रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, शक्तियां मैं महसूस प्रैक्टिकल में यूज कर रहा हूं, सत्य को प्रज्ञ शक्ति यूज कर रहा हूं, यथार्थ निर्णय कर रहा हूं, विस्तार को सार में लेकर ऊपर जा रहा हूं, मायके एक संबंध का अनुभव कर रहा हूं, समेटने की शक्ति परमधाम में जा रहा हूं, ये महसूस कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो अंदर रिकॉर्ड होगी, इसको बोलते स्मृति स्वरूप। तो ज्ञान प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड हो गया, पवित्रता रिकॉर्ड हो गई, शांति रिकॉर्ड हो गई, सच्चा प्रेम रिकॉर्ड हो गया, अतिंद्रिय सुख रिकॉर्ड हो गया, आनंद रिकॉर्ड हो गया, आठों शक्तियां रिकॉर्ड हो गई, प्रैक्टिकल में कर्म किया ना उसके अनुसार, उसके उसी स्थिति में रहकर मैंने कर्म किया, सबसे प्रैक्टिकल में प्यार रखा, सच्चा प्यार रखा, आत्मिक दृष्टि का प्यार देखा, एक दूसरे को व्यवहार दिया, तो रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, शांत रहा, वर्तमान के पास के विचारों को मैंने बिंदु फुल स्टॉप लगा के बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हर संकल्प बोल कर्म किया, तो शांति रही, प्रेम रहा, सुख रहा, संतुष्ट रहा तो सुख रहा, आनंद की अनुभूति, बाप फ्रीडम मिल गई, बंधन मुक्त स्थिति का, आठों शक्तियां महसूस की, तो इस तरह से अंदर रिकॉर्ड होती है, इसको बोलते हैं स्मृति स्वरूप। अभी नई रिकॉर्डिंग के अनुसार क्या होगा, चेहरा और चलन, चेहरा माना मन और चलन माना कर्म, देखना जैसे ब्रह्मा बाबा का देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, सब कुछ उसके अनुसार, समझ रहे, ब्रह्मा बाबा को इसलिए कर्मयोगी कहते थे। तो ये जब होगा ना प्रैक्टिकली, तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे, खाली भाषण से नहीं, खाली मुरली पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिकल सच्चे दिल साफ दिल बनाओ, तो क्या होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लियर, आठों शक्तियां आ गई, इसको बोलते बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, और जब बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हुई तो मन मनाभव टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति रिकॉर्ड हो गई, और उस स्मृति के अनुसार फिर मेरे कर्म शुरू हो गए। यस, समझ में आई ऊपर से क्या, तो इसको बोलते नष्टो मोह। अब हुआ ना नष्ट, अपने आप हुआ ना, प्रैक्टिकल नष्ट मोह हुआ नहीं, हुए प्रैक्टिकल नष्ट हुआ नहीं, नष्ट मोह खाली बोले तो नहीं ना, अब जो प्रैक्टिकल में मैंने अनुभव रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल में मोह कहां रहा था, क्योंकि अंदर रिकॉर्ड था, मोह संबंध रिकॉर्ड थे, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते संस्कार बनते जाएंगे, नए संस्कार बन गए, ये दैवी संस्कार बनते जाएंगे, इनको ही दैवी गुण कहते हैं, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, 16 कला माने 100% बढ़ता जाए, प्रैक्टिस करते करते ये इतने भर जाएंगे 16 कला माने 100% हो जाएगा। संपूर्ण निर्विकारी माने देहभान भी खत्म, मर्यादा पुरुषोत्तम माना चार गुण चार मर्यादाएं और चार नियम के हम एम्बॉडीमेंट बन जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म माना किसी को संकल्प में भी हर्ट नहीं करेंगे, तो ये हम बन जाएंगे प्रैक्टिकल नष्टो मोह स्मृति लब्ध। ओम है जी, कौन? हाँ वो उनका हमारा पार्ट उसके जैसा नहीं है, दर्द नहीं उसको, क्योंकि सहन शक्ति आई ना उसको, प्रभु की याद में था ना वो। चलिए दो, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं योग के, हम 7 मिनट एकदम नष्टो मोह स्मृति लब्ध स्थिति में बाबा की याद में चले जाते। चलिए कि दुनिया से एकदम डिटैच हो जाऊं, मतलब मन बुद्धि को समेट के शरीर आत्मा बन के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइंड हो जाऊं। तो बार बार दिन में सारे दिन में अश्री बनने का, व्हाइट लाइट में करते हैं अश्री बनने का अभ्यास, और कर्म करते कर्मयोगी का पहले सारा दिन करते रहे तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इसी विधि से सच्ची दिल साफ दिल विवेक जागृत निर्णय शक्ति दिव्य चित्त शांत एकाग्रमय, तो चिंतन मुरली का चिंतन चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा मन मना भाव से स्मृति स्वरूप, और फिर प्रैक्टिकल कर्मों में हमारे परिवर्तन। तो हम स्मृति स्वरूप बनते, हमारा चेहरा और चलन परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन है ना, हमारा आहार परिवर्तन विहार परिवर्तन, तो कर्मेंद्र जीत माया जीत प्रकृति जीत विकर्मा जीत कर्मातीत है ना, और बीज रूप स्थिति, तो ये फिर प्रैक्टिकल स्थिति हमें बनानी। चलिए सीधे होके बैठ जाए, सभी अलर्ट होके बैठे,
ओम शांति। तो अवश्य ही आप सभी ने क्लास का भी लाभ लिया और पावरफुल योग का भी, एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद शुक्रिया आभार।